संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान में अर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कथा नंबर 35 चल रही है अपनी, वैसे तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं और कल हो भी गया था, टीका में भी कुछ नहीं है और मैंने देख लिया है उनको वृंदावन दास वगैरह को भी पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। पढ़ो फिर भी गाथा पढ़ो।
सपदे से ही असंखा णत्ति पदे सत्ति कालस्त हैं बहु प्रदेशी जीव पुद्गल गगन धर्मा धर्म सब है अप्रदेशी काल जिनवल देव के हैं ये वचन।
कितना स्पष्ट है देखो, है बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी कौन कौन है? जीव पुद्गल गगन धर्म और अधर्म, ये सब पांच हैं जो बहुप्रदेशी हैं। और अप्रदेशी है काल, जिन्होंने भगवान के ऐसे वचन है। तो लोग क्या कहें, क्या अर्थ बताएं, इसका क्या समझाएं विशेष? टीका पढ़ लेते हैं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान अर्थात सब प्रदेशी हैं, और कालाणु द्रव्य एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। ये सामान्य कथन हो गया जो गाथा में है, अब विशेष स्पष्ट करने में वो ही बताएंगे कि भाई पुद्गल है वो व्यवहार से स्कंद भी है, स्कंद की अपेक्षा से बहुप्रदेशी भी है, निश्चय से एक प्रदेशी है। और वो स्पष्ट करेंगे कि भाई जीव संकोच विस्तार की अपेक्षा सारे लोकाकाश में फैल जाता है, इस दृष्टि से सिद्ध होता है कि वो असंख्यात प्रदेशी है। देखो संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह प्रदेशवान है, सब प्रदेशी है। संकोच विस्तार हो गया और जब वो चींटी के शरीर में आया तो कुछ प्रदेश कम हो जाते होंगे। सब प्रदेशी और अप्रदेशी की तो परिभाषा में ये है ही नहीं कि कितने प्रदेश हों, बस एक से अधिक हों वो सब सब प्रदेशी, और एक हो वो अप्रदेशी, और नहीं हो वाला सवाल ही खड़ा नहीं होता। नहीं होगा तो वो द्रव्य ही नहीं होगा। तो इतना मोटी परिभाषा है तो फिर वो जीव के प्रदेश संकोच में कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। होता भी तो भी उससे कोई सप्रदेशी अप्रदेशी पने में अंतर पड़ने वाला नहीं था। यदि पुद्गल द्रव्य अपेक्षा प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी है, द्रव्य की अपेक्षा, तथापि दो प्रदेशों से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। अब अनिश्चित प्रदेश वाला होने से माने अलग अलग समयों में वो अलग अलग प्रदेश हो जाएंगे, जितने बड़ा स्कंद हो जाएगा। अब अनिश्चित होने से ये जो शब्द इसमें है वो एक सामान्य कथन है, यदि इसमें विशेष में जाएंगे तो कहेंगे क्रमबद्ध पर्याय में तो सब निश्चित है, तो अनिश्चित होने का सवाल कहां खड़ा होता है। मेरा प्रश्न समझे ना, जीव की जैसे हर पर्याय निश्चित है ना, कि अपन यहां से मर के कहां जाएंगे, मर के कहां नहीं, तो ये तो मोटी मोटी पर्याय हैं, यहां से मर के कहां जाना, लेकिन यहां से जब तक मरेंगे तब तक भी तो बहुत परिवर्तन प्रति समय हमें होने वाले हैं ना, तो वो भी सब नक्की है ना, तो पुद्गलों के भी सब नक्की है, तो उनके स्कंद कैसे क्या बनेंगे किन परमाणुओं के वो सब नक्की है, कि चार जब चार जैसे उनके मिल जाएंगे, दो से चार मिल जाएंगे, कभी छह मिल जाएंगे, कभी जैसा मौका लगेगा जैसा मौका लगेगा, कहां सवाल कहां है, कि क्रमबद्ध पर्याय वालों को कहां सवाल है, वो तो सब नक्की है ना। लेकिन अब अनिश्चित क्यों कह रहे हैं? अनिश्चित माने वो जो निश्चित है वो हम आपको बता नहीं सकते क्या निश्चित है, इसलिए हमारी दृष्टि में वो एक अनिश्चित ऐसा ऐसा नहीं कि वो अनिश्चित है। बहुत से लोग क्रमद पर्याय के संबंध में ऐसी बात करते हैं कि ठीक है सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार सब निश्चित है और हमारे ज्ञान के अनुसार सब अनिश्चित है, ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, तो तेरे पता होने से वो अनिश्चित हो जाएगा, तेरे ज्ञान में दोष खड़ा हुआ कि तुझे पता नहीं हुआ, इससे उसमें कैसे कोई परिवर्तन हो जाएगा। कहता हमें जब पता ही नहीं है तो हम कैसे निर्णय कर सकते हैं, तो हम कब कह रहे कि तुम निर्णय करो कि क्या करना है उसका, हम तो ये कह रहे कि तुम ये निर्णय करो कि तुम्हारे हाथ में कुछ करना धरना नहीं है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो अपने माथे का ये बोझा उतारना है। कैसा कब कब क्या क्या नक्की है ये केवल ज्ञानी को मालूम है, कि हमें तो मालूम नहीं है कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें यदि इतना मालूम है कि सब कुछ नक्की है और केवल ज्ञानी को मालूम है और उसमें नो चेंज, चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारा काम इतना जानने से हो जाता है, तुम्हारा सम्मा दर्शन की प्राप्ति तुम्हें इतने जानने से हो जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूं केवल ज्ञान की प्राप्ति इतने जानने से हो जाएगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो केवल ज्ञान के लिए तो सब कुछ सब जब हो जाएगा ना तब को सबको जानेगा ना केवल ज्ञान, उसके पहले केवल ज्ञान होने के लिए जो केवल ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला, ये जो सुनिश्चित विधि है इसका अभाव होके ये, इसका अभाव होके ये, इसका अभाव होके, वो सारी प्रक्रिया तुम्हारे उस क्षयोपशम ज्ञान के काल में ही संपन्न होगी कि जिसमें ये पता नहीं है कि कब क्या होगा, समझ रहे हैं। माने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए तुम्हें वो केवल ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा जानना जरूरी नहीं है, बस केवल ज्ञान में झलक रहा है और उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, भाई इतना ही पर्याप्त है, जो कितने कम से काम चल रहा है। पता ना कि कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं किनको, समंत भद्र को, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनने इस काल में सर्वज्ञता पर जो संकट खड़ा हो गया था, जो बहुत से लोग सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते थे, तो उन तर्क और युक्ति के बल पर आगम में तो सभी जानते हैं लिखाए गए है, इस बात को सिद्ध किया, क्या कि सर्वज्ञ संभव हैं, होते हैं, सर्वज्ञता की सिद्धि की, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ हैं, ऐसा नहीं कि पंचम काल के जमाने के सर्वज्ञ हैं, माने जितना संबंधबद्ध जानते थे पंचम काल के सर्वज्ञ उतना ही जानते हैं, ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ तो वो एक ही प्रकार के होते हैं जिनके ज्ञान में लोकालोक प्रत्येक समय की पर्याय के साथ झलकते हैं, समझ जाए ना, उनका तो सिर्फ ये कि उनने तर्क और युक्ति के साथ इस कली काल में सर्वज्ञता सिद्ध की। मैं आप कहता हूं आज भी संबंधभद्र की जरूरत है, क्यों कि आज भी सर्वज्ञता संकट में है, हमारी जैन समाज में उस वक्त तो अजैनों में थी, जैनों के लिए उन्हें सिद्ध नहीं करने पाए, उनने मतार्थ की दृष्टि से सर्वज्ञ सिद्धि की, सारे अपने भरे पड़े हैं ना जो शास्त्र, कल कोई कह रहा था मेरे साथ, तू कह रहा था कौन कह रहा था कैसे वो अकलंग देव ने की उनने की, अरे अकलंग देव ने तो उनकी टीका लिखी है, मतलब फाउंडर तो संबंधभद्र हैं, वैसे तो उमा स्वामी ने भी सर्व द्रव्य पर्यायुषी केवल से लिखा ही है ना, अरे कुंद कुंद के शब्दों में भी आई, लेकिन जिस तरह तर्क व युक्ति से मतांतरों की दृष्टि से जमकर बात कुंद कुंद संबंधभद्र ने की, और पूरा देवागम स्तोत्र चाहे आप मीमांसा कहो उसके लिए ही समर्पित हो गया, ऐसा किसी ने कार्य समर्पण नहीं हुआ। प्रवचन सार में सर्वज्ञ का बहुत अच्छा वर्णन है, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, वे जो न्याय के आचार्य थे जो हमको न्याय विषय पर पढ़ाते थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रवचन सार में भी सर्वज्ञता की सिद्धि बहुत अच्छी तरीके से है, उन्हें ध्यान से देखा भी नहीं होगा। हम लोग भी ऐसे ही है ना कि जितना शास्त्र कोर्स में होते हैं पढ़े पढ़ाए जाते हैं उनको तो पढ़ लेते हैं, पर बाकी की तरफ उठाकर हम अपने कितना देखते हैं है? उन्हीं से संबंधित और आचार्यों के वैसे ही प्रसिद्ध यदि ग्रंथ हैं तो जिन्हें आत्मकल्याण की भावना है और जिनको किसी ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की बात है उसमें तो देखना ही चाहिए ना गहराई से, और किसी पे देखें चाहे नहीं देखें लेकिन इन बातों में तो देखना ही चाहिए ना निर्णय करके। सकल अपन का आ गए थे ठीक है ये हो गया। सकल लोक व्यापी असंख्य प्रदेशों के विस्तार होने से धर्म द्रव्य प्रदेशवान है। अब देखो धर्म द्रव्य की प्रदेशवान होने की जो परिभाषा लिखी, अधर्म द्रव्य की भी आंख नीच के बिल्कुल वैसी है, देखो पढ़ो नीचे। इसी प्रकार सकल लोक व्यापी असंख्य प्रदेशों में विस्तार रूप होने से अधर्म द्रव्य भी प्रदेशवान है ना, कहीं कोमा फ्लेस्टॉप का भी अंतर है, जब परिभाषा में ही अंतर नहीं है तो उनके प्रतिपादन में अंतर क्यों हो। हम तो ऐसा समझते हैं कि हमने दो दफे जल जल बोल दिया है तो अब की बार पानी बोलना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा बार बार, क्यों ऐसा बोलते हैं, रिपीटेशन हो जाएगा, वही वही शब्द बार बार बोलते हैं, इनको ऐसा नहीं लगता। अब न्याय शास्त्र में क्या, सर्वश्रेष्ठ आचार्य आपके सामने जो युक्ति से बात करते हैं वो भी इस तरह का नहीं कहते, पर भक्ति वाले भी क्यों, 24 तीर्थंकरों की अपने पुराण लिखें, वंदना करें, कुछ भी करें, तो आदिनाथ की अलग बताएंगे, अजितनाथ का अलग बताएंगे, जब उनकी सर्वज्ञता का वर्णन करेंगे तो वो सर्वज्ञता आदिनाथ की अलग होगी अजितनाथ की अलग होगी नहीं। लेकिन अपना एक सीताम्बर भाई है ना, वो तो ऐसा कहते हैं कि पार्श्वनाथ ने चार ही अणु महाव्रत मानते थे, चतुर्याम जिसे वो बोलते हैं, वो महावीर ने एक बढ़ा दिया तो ऋषभदेव एक ही मानते होंगे, फिर बीच बीच में बढ़ा के दो चार, माने धर्म में निरंतर विकास होता है, जिसको विकास है, दो दो चार ये आदिनाथ के जमाने में मानते थे और आज भी मानते हैं, इसमें कुछ विकास नहीं हुआ इसमें भी कुछ विकास होना चाहिए ना। मैंने जो त्रैकालिक ध्रुव है ऐसा अटूट सत्य है तो उस सत्य में भी हम विकास की कल्पना करते हैं, जैसे कहते हैं ये सब चरमानी योग में तो होनी चाहिए, खान पान में तो जमाना बहुत बदल गया है, खान पान में तो आलू में अनंत जीव होते हैं जो सर्वज्ञ भगवान ने बताए थे, तो ये पंचम काल में जमाने में थोड़े कम होने लग गए होंगे। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर एक दफे दोहराना चाहता हूं कि आलू में अनंत जीव होते हैं ये आपको या किसी को भी अंदर से पक्का भरोसा हो जाए जिसे ज्ञान कहते हैं तो फिर वो आलू की तरफ देख नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर, और फिर भी वो खाता है और कहता है कि मैं जानता हूं वो सर्वज्ञ की बात में मेरा भरोसा है कि बराबर अनंत जीव है, नहीं नहीं हो सकता। इसके लिए मेरा तर्क क्या है कि उसी के सामने हाथ पर एक दो इंद्री कीड़े को रखो, पिल्ली फिल्ली कहीं से उठा के लाओ रखो और कहो इसे मार दे, नहीं मार सकता। अहिंसा धर्म के प्रति उसकी कितनी गहरी आस्था है तो ये देखना हो तो इससे देखो, वो जीव की हत्या करने में उसे बहुत संकोच है। हां दीदी, तो फिर ये एक इंद्रियों का इस तरह से बघात करते हैं और रंचमात भी विकल्प नहीं आता है तो इसका मतलब है उन्हें एक इंद्रिय में जीव है इस बात का भरोसा नहीं है। संकट श्रद्धा का है, संकट आचरण का नहीं है। ये तो हमारे आचार्यों ने अणुव्रतों में भी इतना तो बताया है ना आपको नीम की एक दांत तुम तोड़ सकते हो, मैंने कहा था ना, और उसे अपना कर सकते हो उपयुक्त, दो लोटा पानी से आराम से नहा सकते हो, जितना पीने के लिए चाहिए उतना पी सकते हो, समझिए ना। अग्नि का जितना जलाना बुझाने की जरूरत है उतना कर सकते हो, वायु को भी सांस ले सकते हो, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है, 24 घंटा ये पंखा चलता रहे कि साहब इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सा पाप हो गया। अरे वायु में भी जीव है और वहां त्रि जीव होंगे, वो पंखा जितनी तेजी से घूम रहा है वो निरापद नहीं है, अकेला बिजली खर्च की बात नहीं है, वो तो है ही, लेकिन जीव दया की भी बात है ना उसमें। एक कौन सा धर्म कह रहा है जो ये मानता है कि कोई किसी को दया पाल नहीं सकता, और पालने की माने तो मिथ्यात्व नामक भयंकर पाप है, क्योंकि वो राग है ना, दया भी राग है ना। अरे भाई साहब राग की बात नहीं है, 86 या 85 गाथा में लिखा है कि करुणा भाव को दर्शन मोह का चिन्ह लिखा है, चारित्र मोह के चिन्ह की बात नहीं है। वो करुणा भाव वाला चारित्र मोह तो सबसे अंत में छूटेगा, वो तुम्हारा कौन से गुण स्थान तक जाता होगा जैसा, फिर वहां बचेगा कोई राग तो कौन सा राग बचेगा। अरे उत्कृष्टतम जो राग है इसी टाइप का तो कोई बचेगा ना, तो उसमें से जिसका नंबर आता है। मैंने गुरुदेव का कोटेशन भी कई दफे सुनाया है आपको कि जब किसी ने ये कहा, उनने कहा कि इसमें अनंत जीव होते हैं, तुम्हारे पुनर्भव के मां बाप भी हो सकते हैं, अनंत तीर्थंकर भी भविष्य के हो सकते हैं, किसमें वो आल नीम उड़ा के कोई फूल में हो ऐसा वो बता रहे थे। तो सामने वाले ने ये कहा कोने देख किसने देखे, तो इस बात पर उनको बहुत क्रोध आया। अब उन जीवों से हम नहीं बच सकते हैं, अब हम कैसे चलें कैसे करें, अब तो नीचे पैर के आ ही जाते हैं, चलना फिरना तो बंद होनी, उसका एतराज नहीं है क्या कि तू सर्वज्ञ भगवान पर अश्रद्धा व्यक्त कर रहा है। ये तीन अनियोगों पर अश्रद्धा व्यक्त करना इस डायरेक्ट सर्वज्ञ भगवान को गाली देना है, चाहे वो करुणानियोग हो, चाहे वो शरणानियोग हो, और चाहे वो कौन सा है तीसरा है प्रथमानियोग हो। मतलब मेरे कहने का ऐसी डिटेल में नहीं, हम तो सिद्ध हो गया है कि भगवान की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी कि नहीं, क्या लेना देना है। दो आचार्यों के दो वाक्य आए तो ऐसा कहते कि फलाने कहते हुई थी, फलाने कहते नहीं हुई थी, कहा अपन निर्णय कर लो, क्या करना है निर्णय करके, क्योंकि हुई थी तो वो सेकंड नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे, और नहीं हुई थी तो फर्स्ट नंबर, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जिनकी 96,000 शादियां हुई थी वो हमारे शांतिनाथ भी उतने ही बड़े हैं क्यों, और जिनने एक भी नहीं की ऐसे वो 5 वाले थी तीर्थंकर वे भी उतने ही हैं, तो उनकी जो बराबरी है वो तो सर्वज्ञता पर है ना। मेरा मतलब वो शादी पे कहां है, शादी इतनी महत्वपूर्ण कहां है, होना भी और नहीं होना भी, की और नहीं की भी, चार आदमी बैठ के तत्व चर्चा कर रहे हैं, एक गृहस्थ है, एक ब्रह्मचारी है, ऐसे अपने है ना समझ लो आप चार जने, तो अब तत्व चर्चा में कौन बड़ा कौन छोटा, जो बात है सत्यता उस पे आधार पे बात होगी ना। नहीं नहीं साहब ये ब्रह्मचारी जी कह रहे, ये तो माननी ही पड़ेगी, क्यों वे ब्रह्मचारी जी 2 और 2 5 कहेंगे तो उनकी माननी पड़ेगी है? क्या कहने बोलिए आप, वहां तो बराबरी पर ही बैठना पड़ेगा। खतरनाक बात कहता हूं, यदि महाराज भी तत्व चर्चा में बैठेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें भी उसी हैसियत में आना पड़ेगा। यदि हम कोई बात आगम प्रमाण से पेश कर देते हैं तर्क और युक्ति से उसे सिद्ध कर देते हैं तो ये महाराज बड़े हैं इसलिए उनकी मानो इनकी नहीं मानो ये नहीं चलेगा। अरे यदि ऐसा तुम्हें चलाना है तो बात ही नहीं हो सकती, पहले नक्की कर लो। आप वो तो बात तो जो महाराज कहेंगे फाइनल तो वही मानी जाएगी। अब चर्चा कर लो, फिर क्या चर्चा कर लें, फिर क्या चर्चा कर लें, आप समझ रहे ना। देखो इस प्रकार काल द्रव्य अप्रदेशी और शेष द्रव्य सब प्रदेशी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गाथा में कोई विशेष बात नहीं है, मात्र इतना ही कहा गया है कि एक जीव के लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश है, धर्म अधर्म द्रव्यों के भी असंख्य प्रदेश ही है, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। इस प्रकार चार द्रव्य सप्रदेशी और अस्थिकाय ही हैं, यद्यपि पुद्गल परमाणु द्रव्य एक प्रदेशी ही है, तथापि स्कंद की अपेक्षा उपचार से वह संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कहा गया है, इस कारण सप्रदेशी है, परंतु कालाणु एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी ही है। इस प्रकार जीवादि पांच द्रव्य अस्थिकाय और कालाणु नस्तिकाय। देखो अब क्या हुआ, कल मैं कह चुका इस बात को कि वो व्यवहार का कथन है कौन, उसको अस्थिकाय कहना, और निश्चय से वो नास्तिकाय है, और फिर निष्कर्ष में पांच अस्थिकाय। अब भी आल वो लैन सूखी नहीं, नीचे की लैन में इस प्रकार पांच द्रव्य है। अब यहां इतने व्यवहार को इतना महत्व दे दिया, अब आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो फैक्ट है उसके चित्र में वैसा स्वीकृत होनी चाहिए। तो कहां जिनागम में ऐसा है कि हम निश्चय को ही ज्यादा महत्व देंगे, व्यवहार को देंगे ही नहीं, ऐसी कुछ है नहीं। वस्तु के स्वरूप के निरूपण में जहां जो अपेक्षा है हमारे ख्याल में वो बात है, तो हमारे कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब एक गाथा आचार्य जयसेन के में आती है जो अमृतचंद की टीका में नहीं आती है, वो गाथा अपने यहां पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं है, जो बातें ऊपर अपन कह के आए हैं वही उस गाथा में है। लेकिन फिर भी एक गाथा उसमें है जिसमें प्रति उनको मिली होगी जयसेन आचार्य को, उस प्रति में होगी वो गाथा, इसलिए उनने उसका अनुवाद कर दिया। ये कोई मतभेद नहीं है कि उनने किया, ऐसा भी होता था पुराने जमाने में। दो बातें हो सकती हैं कि एक तो उनको वो किताब प्रति मिली हो जिसमें 415 गाथाएं एक समय सार की थी, कि इसकी जितनी थी उतनी थी, और दूसरे आचार्य को वो प्रति मिली जिसमें 30 गाथाएं ज्यादा थी। अब वे क्या करें, उन्हें जो सामने उपस्थित था उसका उन्होंने अर्थ कर दिया, तो उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ। एक ये भी हो सकता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहले के आचार्य जो टीका लिखते थे तो जो गाथा सरल होती थी उस पर सुगमम एतत् इतना कहकर बढ़ जाते थे। कोई किताब में पढ़ा तुमने, न्यायशास्त्र की किताबों में मैंने पढ़ा है, क्या पर सुगमम एतत् माने इसका अर्थ सरल है, बस खत्म, आगे बढ़ जाते थे। अब कोई इतना भी नहीं लिखते थे कि सरल है, कहने की क्या, जो सरल है तो सरल पढ़ लेंगे, तो उनने उस पर टीका नहीं लिखी सरल होने की वजह से। तो आगे के जो लिपिकार थे, लिपिकार का मतलब समझे कंपोजिटर, वो लिपिकारों ने ये मान लिया कि ये गाथा है ही नहीं, नहीं तो अमरचंद टीका लिखते। तो लिपिकार ने कमाल कर दिया, हो गए वो गाथा ही छोड़ दी। एक बहुत बड़ी संभावना ये भी हो सकती है, एक संभावना ऐसी भी हो सकती है कि जयसेन को या और किसी आचार्य को ऐसा लगा होगा थोड़ी बात अस्पष्ट रह गई तो उनने खुद वो एक गाथा बना के वहां जोड़ दी हो। मतलब कोई ऐसा तो था नहीं कि मेरा माल है तेरा माल है, इसमें तो किसी को कोई वो था नहीं, उसी से जुड़ती हुई कोई बात उनने उसमें जोड़ दी हो। जो कुछ भी हुआ हो, आज की रिसर्च का तरीका ये है कि हमें तो जो भी उपलब्ध है विद प्रूफ हम उसको प्रस्तुत कर दें और फिर हर श्रोता पर छोड़ दें कि अपने विवेक से वो सब निर्णय कर, ख्याल में ना। और उस आगे फिर तुमको और नई मिल जाए तो उसमें भी ऐसा ही करना, माने रास्ता एक सुनिश्चित है। अब गाथा पढ़ो।
ए दाणी पंच दब्बाणी उज्जिय कालम तु अति कायत्ति भन्नन्ते काला बहुपदेशाण पचयत्तम रे काल द्रव को छोड़ कर अवशेष अस्ति काय है अर बहु प्रदेशी पनाही है काय जिनवर ने
का। काल द्रव को छोड़कर बाकी के पांच अस्थिकाय हैं और बहु प्रदेशी को अस्थिकाय कहते हैं। ये बात इस गाथा में इतनी सी बात लिखी है जो अत्यंत सरल भाषा में पद्यानुवाद में कह दी है। इसकी टीका जो जयसेन ने लिखी उनने भी इतना ही लिख दिया है, बस खत्म। बस उन्होंने लिख दिया इसमें वे उपादे हैं, दे उपादे हैं, वे परम उपादे हैं, पंच परमेष्टि उपादे हैं, सिद्ध और उपादे हैं, और पंच परमेष्टि सिद्ध भी आ गए। ये कई कुछ ना कुछ कह दें, अपन भी ऐसा कर रहे ना कि जो ये प्रश्न इन पे करते हैं और जो फिर बातें इनमें नहीं भी होती हैं तो दो चार बातें ऐसी भी बता देते हैं। अब वो कोई लिख के कर उसमें लिखता जाए और वो समझे इस गाथा का अर्थ है तो उस गाथा का तो अर्थ नहीं है। हमको बहुत विवेक से सुनना भी ये चाहिए कि ये बात जो कही गई है वो इस गाथा के अर्थ है, उसमें बताई गई है और ये बात बीच में आ गई है और उसको कह दिया गया है। समझिए ना, आपकी जानकारी के लिए, जनता को बताने के लिए तात्कालिक प्रसंग की अपेक्षा, किसी भी अपेक्षा कह दिया गया है, इतना भेद विज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम इतने इसमें असतर्क हैं। मैं जब अशोकनगर में था, करीब 60 साल पहले की बात कहता हूं शांति जी, तो वहां एक मुनिराज थे विमल सागर जी। ये विमल सागर जी वो आचार्य अभी मरे हैं, वे नहीं, ये तेरापंथी या विमल सागर जी आचार्य थे। तो उनने एक समय सार छापा था बनारसीदास जैसे नाटक, बनारसीदास के बहुत से कलश उसमें थे, बहुत से थे, सब नहीं थे, तो 25% भी नहीं होंगे, 20% होंगे, है ना। और उसका नाम रख दिया था अध्यात्म कमल मार्तन नाम है। विवेकवन मार्तन का नाम बहुत चलता था ना उस वक्त, तो इसलिए सबको मार्तंड मार्तंड लिखने की बहुत, हर किताब का नाम मार्तंड लिखना पड़ता था। तो मैं उसका स्वाद, मुझे मिली किताब में उसका स्वाध्याय करता था। तो नाटक समय सार के पर्दे थे बहुत बढ़िया बढ़िया, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं पाठ पढ़ता था। फिर उसके अंत में उनने कुछ दवाइयां लिख दी थी कि पेट में दर्द हो तो ये पंच सकार चूर्ण लेना चाहिए, इतना हो तो ये लो फलानी दवाई इसमें लगा दो, आंख में लगा दो ये तो आंख ठीक हो जाती है, कान में ये डालो तो ये ठीक, ऐसे उसने दवाइयां भी उसने अंत में लिख दी थी। 10-5 पेज वो दवाइयां लिख दी थी और मंत्र तंत्र भी लिख दिए थे ज्योतिष मोतिष के कुछ, जो भी उनके पास ज्ञान का भंडार था उनको एक किताब छपाने को मिली तो उसने सब डाल दिया। वो तो मैंने पहले देख लिया, मैं तो उपेक्षा से उसे छोड़ दिया। लेकिन मेरे ही श्रोताओं में से एक ने कहा कि साहब को ऐसा कर रहे हो तो ऐसा हो जाता है फायदा, इसलिए आपको इसे ऐसा करना चाहिए। मैंने कहां से कहां देखा तुमने, कहा कैसा समय सार में लिखा, अभी समय सार में लिखा है फिर तो दवाई अपनी सिद्धा समय सार में कितनी अधिक है, तो ला करके उसने वो समय सार में बताया। अब आप समझो विचार करके कि वो कितनी बड़ी गलती है। हम तो सोचते कि आज ना क्या नुकसान है, और आज तो ऐसा होने लग गया है शांतिलाल जी, 90% मैं आपको बोलता हूं कि वे दवाइयां जो अभक्ष हैं वे भी लिखी मिलती हैं उसमें नहीं, ये अखबार जैन गजट आता है, जैन दर्शन जैन गजट में हर अंक में मिलेगी कि वे बताएंगे कि ये चीज से पेट ठीक हो जाता है और उसमें बिल्कुल अभक्ष भक्षण मतलब जो नमी कंद और शहद महद ये भी सब लिखा रहता है, और लेखक के नाम पे महाराज का नाम लिखा रहता है। लेकिन आप इस दृष्टि से देखना, मैंने वो कितना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि सामने वाले लोग कितनी श्रद्धा से पढ़ते हैं उसको, उस किताब के नाम के साथ कुनकुन का नाम लिखा है तो उसे कितनी श्रद्धा से पढ़ते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि जब आप समयसार अनुशीलन पढ़ेंगे और कोई चीज आप उसमें से समझेंगे और फिर कहीं कहेंगे तो समयसार में ऐसा लिखा है ये बोलेंगे, समयसार अनुशीलन में लिखा है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या आया समझ में आपके? तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि हम जो इसमें लिख रहे हैं वो कुंद कुंद के नाम से चलेगी, है ना? तो हमने लिखा भी है कुंद कुंद का माल सब क्या, बोलो बोलो चंद तुम पढ़ते हो ना रोजी ना, ऐसा बोला जाता है एक साथ एक स्वर में।
इसकी ही यह टीका जो हिंदी भाषा में तत्व प्रबोधिनी लिखी गई है मेरे द्वारा, इसमें मेरा नहीं रंच भी निश्चित जानो, कुंद कुंद का माल पूर्णता इसमें मानो।
हमें गारंटी दे रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं लिखें जो कुंद कुंद के सिद्धांत के विरुद्ध, क्योंकि लोग उसी श्रद्धा के साथ देखते हैं। क्रमबद्ध पर्याय जब किताब लिखी थी तो सब विद्वानों की सम्मति आई थी, तो खेमचंद भाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे विद्वान थे पूज्य गुरुदेव श्री के उसमें, और वो हिंदी प्रांत में जाया करते थे प्रवचन करने, गुजरातियों में और कोई नहीं जाता था ज्यादा, बाबू भाई जाते थे कि खेमचंद भाई जाते थे। तो उनने ऐसा लिखा उस किताब ने कि आपने क्रमबद्ध पर्याय नामक शास्त्र हमें मिला और आपने जो क्रमबद्ध पर्याय नामक शास्त्र लिखा है तो उसकी उन्हें बहुत बहुत प्रशंसा लिखी, वो किताब में छपी है। तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि साहब आप क्या लिख रहे हैं, मैं तो किताब लिखी है, मैंने कोई शास्त्र नहीं लिखा, मैं शास्त्र लिखने वाला कौन होता हूं, क्या समझ आया? मैंने उनने शास्त्र लिखा उसे तो मैंने कहा ये बंदो किताब लिखी, तो उनने कहा तुम बहुत भ्रम में हो, तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारी प्रशंसा की है। अरे क्रमबद्ध पर्याय की सर्वज्ञता की जिसमें चर्चा है वो तो शास्त्र ही है, तुम क्या हो नहीं हो तुम जानो, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय तो शास्त्र है, ऐसा बोले मैंने, क्या मतलब आप समझ गए? ऐसा नहीं है, आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जब आप जनागम के अनुसार लिखते हैं तो आप शास्त्र लिखते हैं और उसको किताब कह के आप शास्त्र का अपमान नहीं कर सकते। आपको यह डर लगता है कि उसे शास्त्र कहेंगे तो हमारी प्रशंसा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो अपनी विषय वस्तु के कारण शास्त्र है, तुमने लिखा इसके कारण शास्त्र नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है क्या? नहीं है, बोलो। पंडित का लिखा, ये जो पंडित का लिखा जो बोलने वाले हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती है, है? चलो क्या हो गया खत्म? अभी मेरे को अगली गाथा पे जाना है ना, समय तो है, 15 मिनट है, चलो पढ़ो।
लोगा लोगे सुणभो धम्मा धम्मे ही आद दो लोगो से पणुच्च कालो जीवा पुण पोगला सीता गगन लोका लोक में अर लोक धर्मा धर्म से है व्याप्त अर अवशेष दोषी काल पुत्र जीव है।
एक लाइन का अर्थ सीधा सच्चा मैंने और सरल भाग गया कि गगन लोका लोक से क्या कह रहे हैं, आकाश जो द्रव्य है वो लोक और अलोक दो को मिला दो तो आकाश होता है, मिला दो नहीं मिले तो हैं ही, हमने अपनी व्यवस्था की दृष्टि से समझने के लिए भेद कर लिए हैं, और वो भेद का आधार है कि जहां छह द्रव्य हैं तो उन छह द्रव्यों सहित उस लोकाकाश को उस आकाश को हम लोक कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में आकाश के दो टुकड़े नहीं हुए, आकाश तो एक ही है। तो लोकालोक में माने लोकाकाश और अलोकाकाश को मिलाओ तो एक आकाश द्रव्य है, और लोक में धर्म और अधर्म द्रव्य है, लोक में व्याप्त है माने एक एक प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश है, और अवशेष दो हैं काल उदगल जीव, और अवशेष दो कौन बचे, दो धर्म अधर्म आकाश हो गया, अब काल हो गया तो चार हो गया, अब दो बचे वे पुद्गल हो जीव है, मैंने छह द्रव्य है ये बता रहे, इतनी सी तो बात है। अमृतचंद की टीका पढ़ते हैं, धर्म और अधर्म नहीं, आकाश लोक अलोक में क्योंकि वह छह द्रव्यों के समवाय अथवा और असमवाय में विभाग बिना विभाग के रहता है, न छह द्रव्यों के समवाय और छह द्रव्यों के असमवाय, समवाय माने मिला हुआ और असमवाय माने मिला हुआ नहीं होना, इन दोनों में आकाश अखंड रूप से रहता है। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र हैं क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव पुद्गलों की गति और स्थिति लोक के बाहर नहीं होती और न लोक के एक प्रदेश में ही होती है। क्या कह रहे, हर एक को सिद्ध कर रहे, ये धर्म अधर्म सारे लोकाकाश में है, तुमने कैसे जाना, तो कहते जीव सारे लोकाकाश में जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जीव वो उसमें निमित्त हैं, वे नहीं होते तो धर्मास्ति काया भावा तत्वासूत्र में लिखा वहां तक नहीं जाते, आगे नहीं है तो नहीं जाते हैं, तो जाना जरूरी है, कौन कहता जाना जरूरी है, लिखा नीचे लिखा ना कि और ना एक प्रदेश में उनकी गति, पर एक ही प्रदेश में रह जाए वे आकाश के कौन जीव और जीव, ऐसा भी नहीं है, और सब में ही फैल जाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक से दो द्वितीयाधिक प्रदेश से लेकर सारे लोकालोक तक फैल सकते हैं, इसमें उनका निमित्त बना है। तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति लोक में सर्वत्र होती है, काल भी लोक में ही है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं, और वह काल लोक के एक प्रदेश में ही है क्योंकि वह अप्रदेशी है, दो हिस्सा नहीं दो परमाणु, इसलिए एक प्रदेश से ज्यादा मैं ठहर नहीं सकता। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है क्योंकि लोक छह द्रव्यों के समवाय रूप ही है। ये सामान्य बातें हैं जो इसमें लिखी हैं, जो सब जगह अपन लोगों ने पढ़ी हुई हैं अच्छी तरीके से। इसमें यह बात विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है, और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रूक्ष गुण पुद्गल के धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। अब ये धर्म होने से बोलते ना, धर्म माने स्वभाव, यहां धर्म माने धर्म द्रव्य भी नहीं, धर्म माने पुण्य पाप भी नहीं, और धर्म माने नीतराग भाव भी नहीं, माने उनका ये स्वभाव है पुद्गल का कि वे आकाश के एक प्रदेश में रहेंगे नहीं, आएंगे मिलेंगे दूसरे से बिछड़ेंगे, ऐसी प्रवृत्ति उनमें निरंतर होती रहती है। अब उसको जब उन्हें सुख दुख नहीं होता तो स्वभाव और विकार विभाव कहने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी अणु रूप में भी रहें जैसा द्रव्य है तो उसको हम स्वभाव कहते हैं, और जो स्कंद मिल गए तो उसे हम विभाव कहते हैं, वो विभाव से उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इतना हमें भेद तो करें कि ये स्कंद है तो परमाणु है, वो द्रव्य है, वो शुद्ध है, वो स्कंद तो दो। अब ये भी बात नियम है कि अनेक द्रव्यों की है वो, माने अब परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिलेगा ना तब तो स्कंद बनेगा ना, और जीव में ऐसा स्वभाव है कि दो जीव आपस में मिलते नहीं, कितने ही एक क्षेत्र आप गाही रहे वो निगोदी आके एक शरीर में जो तुम्हें पड़ा होगा सुई की नोक के बराबर निकालो और उसमें क्या क्या जो है सब और उसमें इतने आनंद दीप रहते हैं तो एक ही उसमें रहते हैं ना, लेकिन फिर भी वो दो जीव आपस में किसी भी कीमत पर कहीं जुड़ते नहीं, उनका पृथकपना अत्यंत स्पष्ट रहता है। एक क्षेत्र में होना ये भी तो एक बात है ना, अपने संबंध होने के लिए कोई कम थोड़ी है। अपने शरीर और अपना आत्मा का क्या है ये? इसके साथ में एक क्षेत्र आप गाह संबंध है बस, कि दो द्रव्य के बीच में कोई संबंध होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। ये जो हमारे महासिद्धांत हैं तो इसके हिसाब से ये शरीर और आत्मा बस आकाश के एक प्रदेश में हैं, इससे ज्यादा क्या संबंध है। और इनके प्रणमन में आत्मा का और आत्मा के प्रणमन में इनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि फिर वो कर्ता कर्म संबंध जुड़ जाएगा। अब फिर वो समय सार में पढ़ेंगे तो कहेंगे उपादान उपाधेय भाव से तो है ही नहीं और निमित्त निमित्त भाव से भी नहीं है। कौन सी आता ना स्वामी गाथा के आसपास आता ना, कुमार कुमार का घड़े का मिट्टी का है, निमित्त उपादान से भी करता है। इतना ये स्वतंत्र है दोनों। अब ये जीव का उद्गल के साथ तो एक क्षेत्र का संबंध होता है जिसे कहते हैं, और इतना बड़ा संसार सारा इस पर खड़ा है ना, लेकिन दो जीव आपस में नहीं मिलते, कोई दो जीवों का संबंध नहीं होता। उसी आकाश के प्रदेश में अनंत जीव हैं और प्रॉपर्टी भी पार्टनरशिप में है। कैसी? कि वे जो शरीर के परमाणु हैं वे इसके भी शरीर हैं और उसके भी शरीर हैं, है कि नहीं? बोलो निवोदिया जीवों में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं तो वो शरीर किसका है अनंत में से? सभी का है ना। अपना ये शरीर है और इसमें भी कृष्ण जीव भी रहते हैं और भी जीव रहते होंगे, निगोदिया जी जीव जैसे भी रहते होंगे जो भी तुम्हारे करुणा नियोग में लिखे हों, लेकिन है ना बहुत से जीव। अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है करुणा नियोग के में कि अपन कहते हैं मांस खाने में ये दोष है कि हाथी को मार के खाया, लोग कहते हैं ना तो एक हाथी को खाएंगे महीना भर तक खाएंगे तो एक जीव मरेगा, ऐसा तर्क देते हैं। और छोटे छोटे जीवों को मार के खाएंगे मक्खी मच्छरों को तो एक दबे के नाश्ते के लिए हजारों जीवों को मारना पड़ेगा, ऐसा एक तर्क प्रसाद उपाय में आता कि नहीं आता है? लेकिन हमें इस बात को भूल जाते हैं सब जैनी भी कि गाय के मांस में गाय के आकार के अनंत त्रिश जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं, मनुष्य के शरीर में भी मर जाने के बाद वो मांस में भी, मानो जब शरीर के साथ आत्मा के साथ मांस है जिंदा जिसे आप बोलते हैं तब भी, और जब वो जिंदा नहीं रहा तब भी। कि अब उसमें तर्क दिया है कि भाई वो तो गाय तो मर गई, अब मरी हुई गाय का मांस खाने में क्या दिक्कत है, हमने तो गाय को मारा नहीं, और हर पशु हर चीजें मरते तो हैं ही, तो इतना भोजन हमेशा ही तैयार होता है बिना ही उसके प्रयत्न के। जंगल में ऐसे बहुत से जानवर हैं जो शिकार करके खाते हैं मांस भक्षी में, और कई परोपजीवी हैं वे शिकार करते ही नहीं है, वो तो दूसरे ने शिकार किया बस उसी में घात लगा के खा पी के अपना काम चलाते हैं, जूठन मूठन बची रहती है उसकी तो उसे खा के काम चलाते हैं, क्योंकि उनमें दूसरे को मारने की ताकत ही नहीं है, कमजोर है ना। तो ऐसे जीव तो वो कहते हैं कि हम तो मारा ही नहीं, हम तो अहिंसक हैं, तो फिर अनंत जीव होते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आता। शराब नशा करती है ये तो हमारे समझ में आता है, लेकिन एक बिंदु प्रचुर अनंत जीवा सागर धर्मामृत में एक छंद है कि एक बूंद में जितने जीव हैं यदि वे फैल जाएं, यदि एक बिंदु प्रचुरंति जीवा, यदि एक जीव के जीव फैल जाएं तो लोक पूर्ण हो जाएं, जगह में दूसरों को जगह ही नहीं बचे, सारी दुनिया भर जाए, कृष्ण आदि आंवले के बराबर हो जाएं, देर के बराबर हो जाएं, तो फिर कहीं किसी को जगह नहीं मिले। इतने जीव हैं। अब उन जीवों का जो ही वो कहते हैं अस्तित्व हमें नहीं है, तो यही सर्वज्ञ की सिद्धा की बात है ना। इसको अपने यहां जो ध्यान है ना चार, उसमें कौन सा ध्यान कहा है? आज्ञा विचय ध्यान, धर्म ध्यान में इसका नंबर दिया है कि भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा ये नहीं है कि तुम उधर चले जाओ जल्दी जल्दी, ये कर लेना, ये बना लेना, सकम में सकर चले जाओ, ये व्यवस्था ऐसी आज्ञा भगवान, ये जो भगवान के इसमें अनंत जीव हैं, इसी का नाम भगवान की आज्ञा है। ये कोई तुम्हें और कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं देते। इसका विचार करना वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। व्यवहार से वो निश्चय से तो जो दूसरे वो जो भी जिस भूमिका में आप हो ना, जैसे कि मान लो कि तीन कसाई के अभाव रूप भूमिका में हो तो उसकी जो स्थिति होती है वो, दो कसाई का अभाव है तो उसकी स्थिति जो होती है वो, उनके हिसाब से वो बैठेगा जो कौन सा ध्यान कहां कैसा होता है, उससे क्या होगा आपको फायदा, शुद्ध उपयोग होता है, सोपयोग होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो स्थूल जो कथन है वो इस दृष्टि से है। हो गया समय, ये गाथा अपना काम निपट गया ना, कैसे कल पढ़नी पड़ेगी। मैं देखूंगा कल पढ़ने की जरूरत होगी तो पढ़ूंगा।